भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम् अनुवाद, संस्कृत से अंग्रेजी, और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 38। इतम नृत्यर्य कृषिदेवजावतारौ लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपान्। धर्मं महापुरुषपासि युगान्निवृत्तं छन्दःखलो यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम्। इतं नृत्यर्य कृषिदेवजावतारौ लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपान्। धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्दःखलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम्। इत्थं नृत्यर्य कृषिदेवजावतारौ लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपान्। धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्दःखलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम्। इत्थं नृत्यर्य कृषिदेवजावतारौ लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतिपान्। धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्दःखलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्त्वम्।
अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार हे प्रभु, आप विभिन्न अवतारों में मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा असुरों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप अपने आप को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीन युगों में प्रकट होने वाले भगवान। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जिस प्रकार मधु तथा कैटभ के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, उसी प्रकार वह परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग चार हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष तीन युगों में भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं, किंतु कलयुग में यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में प्रकट हुए, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उल्टे ही जब जब उन्हें कृष्ण के समान संबोधित किया गया, तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वह एक भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वह जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतः वे अपने आप को भगवान कहने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेषतः भागवत में 11वें स्कंध के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया गया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतएव जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है। वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है।
इथम नृत्यग्रषि देवजशावतारा लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतिपान्।
प्लीज अपना हरे कृष्ण।
धर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्तं छन्न खलो यद् अभवस्त्रि युगोत सत्वम्। परोक्ष रूप में यही श्लोक चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत का, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, जो स्पष्ट चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं देते, परंतु सिद्धांतिक विश्लेषण से हम समझ सकते चैतन्य महाप्रभु के बारे में है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कृष्ण वर्णं त्वषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदम् यज्ञाय संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधसः। तो सब गौड़ीय वैष्णव का यही श्लोक का कंठस्थ करना है। यदि आप अभी तक कंठस्थ नहीं किया तो जरूर आपको कंठस्थ करना चाहिए। सब बोलिए कृष्ण वर्णं त्वषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदम् यज्ञाय संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधसः। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का अवतार के बारे में प्रमाण देने में यही श्लोक देते हैं, और इसका बांग्ला अनुवाद भावार्थ इस प्रकार देते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ jay bhaje shay dhanya. Sankirtan pravartak Sri Krishna Chaitanya spashte. Sankirtan yagye, sankirtan yagye jay bhaje shay dhanya. Spashte ne? Jo sankirtan yagya ke dwara Chaitanya maha ye avataka bhajan kate wohi vyakti dhanya hai. Sheto Sumeda Arku Buddhi Shangsa Sarva Jagya Hoite Krishna Nama Jagya Sa. Jo Krishna's Kaviraj Goswami or bhi Mantavya karte hai ki Kali Yugme Jo Chaitanya Mahaprabhu ki Aradhana Sankirtan Yagya ke dwara karte hai wo vyakti Sumedas hai, buddhiman hai. Samanyata Kali Yuga ke manav buddhihin hai, ya kubuddhi hai. Prayanal payasa sabya kalavas min yuge jana ha. Mandasu manda mateo manda bhagya hi upadruta ha. Kali Yuga ke lakshanon, Kali Yuga ke Manushyong ke mukhya lakshan yahi shlok mein Srimad Bhagavat ka shlok mein varnit hai ki Kali Yug mein jivan ayu bahut kam hote aur samanya log ki buddhi kharap hai do prakar kharap hai ek hai ki medhas buddhi, smriti shakti, vichar ki shakti kam hoti hai. Aur dusra prakar bhi ve kubuddhiman hai. Kyunki unke bhavana bahut nikrisht hoti hai. Asat karya parayan hai. Sadaiva Sharyantra karte to kaise me dusron ko daman kar sakto kaise dusron se me paisa le sakto kaise dusron ka soshan karna hai to isi prakar sadaiva sochte rehte Kali Yuga ke log to is prakar bhi unki buddhi kharap hai Unke bhagya bhi kharap hai. Aur Kali Yuga ke manushyon ka mukhya lakshan hai ki unke man sadaiva ashant rehte, vichalit rehte. To Kali Yuga mein samanya log ki buddhi is prakar bahut kharap hote. Parantu jo sankirtan yagya karte hai Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki aradhana is prakar karte hai ve sumeda hai unki buddhi shuddh hoti hai aur wo vastavik buddhi ka lakshan hi hai ye sab prashna puchna chahiye Buddhi kya hai? Einstein jaise buddhiman hona. Wo buddhi, wo bhautik vichar mein aise buddhiman hona buddhi ka lakshan hai. Parantu vastavik buddhi ka lakshan hai. Vichar vimarsh karke samajna Kis prakar, kaise jivan vyatit karne se hamara param shreya hoga. Einstein ityadi bare bare buddhiman log, to buddhiman, kaise buddhiman hai, bhautik sthiti jisme ham hai, uska vikas karna, jaise aajkal adhunik vigyan ka pradan se विद्युत की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक लाइट है, आवाज का बढ़ाना है। तो इस प्रकार भौतिकतावादी लोग सोचते हैं कि यही विकास है, यही हमारा श्रेय है। परंतु पश्चान अपि न पश्यति, सब देखते हैं कि सभी जीव का जन्म के बाद मृत्यु होते है। तो मृत्यु के पश्चात क्या होगा, हम क्यों यहाँ भौतिक संसार में है, हम क्यों अलग अलग प्रकार के दुख भोगते हैं, और क्यों हम जितने भी तथाकथित विकास करते हैं तो फिर भी हमें बहुत प्रकार के दुख से पीड़ित रहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछना वास्तविक बुद्धि का प्रथम स्तर है। और यदि किसी व्यक्ति आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान हो लेकिन इस प्रकार प्रश्न नहीं करते हैं, तो उनकी वास्तविक बुद्धि तो कभी भी जागृत नहीं हुई। तो सुमेधा, जो सुमेधा है, सुमेधवान, वे इस प्रकार प्रश्न करते हैं, क्यों हम भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक स्थिति के अतीत कुछ है, पूरा जगत चलते रहते है। जगत शब्द का अर्थ क्या है, गच्छति जगत, जो सदैव चलते रहते है उसको जगत बोलते है। तो कैसे चलते है, चलाने वाले कौन है, और वास्तविक उत्तर प्राप्त करने के लिए तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। वास्तविक बुद्धि का पहला लक्षण है कि हमारा वास्तविक श्रेय, उत्तम श्रेय क्या है, इस प्रकार पूछना, और उत्तर प्राप्त करने के लिए हम विद्वान ज्ञानी जन के पास जानना चाहिए। और ज्ञानी जन तो केवल ज्ञानी नहीं होंगे, तो उनका चरित्र में हमें देखना है कि वो आत्म साक्षात्कार किया है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति जानते हैं कि जगत दुखमय है और दुख से बचाने के लिए हमें वो सांसारिक कार्य में अंशग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उस प्रकार लोग जो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो व्यक्ति हम उनका आचरण से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रकृति के तीन गुण के पार किया है, वो अक्सर आत्म साक्षात्कार किया है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एव थे आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः, बुद्धिमान सुमेधा व्यक्ति का मुख्य लक्षण यही है या प्रकट लक्षण है कि वो जानते हैं कि इंद्रिय सुख जो है वो क्या है, इंद्रियों और इंद्रिय के विषयों का संस्पर्श करने से इंद्रिय सुख होते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग, सुमेधा लोग जानते हैं कि वो इंद्रिय सुख का प्रयास करने से बहुत दुख की सृष्टि होती है, और इसलिए बुद्धिमान लोग जिनकी वास्तविक बुद्धि जागृत हुई तो उस प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं। तो केवल ज्ञानी होने से, आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन करने से वो तो पर्याप्त नहीं है, तो अपना जीवन में वो ज्ञान के अनुसार आचरण करना चाहिए। हम वेदांत वेदांत तत्व ज्ञान हम यूनिवर्सिटी में भी सीख सकते और ऐसे अध्यापक हमको सिखा सकते, लेकिन शास्त्र का निर्देश है तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परेत निष्णातम ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्, कि किसी यूनिवर्सिटी का अध्यापक से यही सब सीखने से वास्तविक कल्याण नहीं होगा। हमें वैसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जो केवल शास्त्र ज्ञानी नहीं है परंतु उनका आचरण से समझना चाहिए कि वे पूरी तरह ब्रह्म उपाश्रय परंपरा पद्धति में से परम ब्रह्म से आश्रित है, और इसलिए वे भी समझना चाहिए परम ब्रह्म कौन है, क्या है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। परम ब्रह्म हे कृष्ण, परम धाम हे कृष्ण, परम पवित्र हे कृष्ण, अनादिर आदि कृष्ण, आदि देव देवताओं के मूल स्रोत हे कृष्ण। तो ये सब समझना चाहिए वेदांत दर्शन के द्वारा, परंतु इस कलयुग में ये सब जटिल तत्व ज्ञान वेदांत दर्शन में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको बताए, वास्तव में इनके गुरु जगत गुरु के गुरु यही द्विधा है कि भगवान जो सर्वज्ञ है, जो जगत गुरु है, स्वयं एक गुरु के चरण में आत्मसमर्पण करते हैं। तो इसी प्रकार जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु गुरु है क्योंकि अपना आचरण में से हमको सिखाते हैं कि हम जितने बड़े ज्ञानी होते हो तो हमें गुरु के पास जानना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिगच्छत, और आधुनिक काल में एक महान उदाहरण है कि परम पंडित परम ज्ञानी श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो अक्षर ज्ञानहीन गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के पास जाकर दीक्षा वैष्णवी दीक्षा ग्रहण किया, और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए कि मैं पहले सोच रहा था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, परंतु श्रील गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का संस्पर्श करने से, इनके सानिध्य आने के बाद समझ गया था कि समस्त वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान इनके चरण के राज का एक खंड में है। तो संपूर्ण ज्ञान यही है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, कृष्ण भगवान हमारे प्रभु है। तो इसी प्रकार सुमेध जन संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति तो भौतिक हिसाब से बड़ा ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, तो वो ऐसे व्यक्ति भी सुमेधा है यदि संकीर्तन यज्ञ करते हैं, और यदि ऐसे व्यक्ति की स्मृति शक्ति, विचार विमर्श की शक्ति अधिक नहीं होती है तो भगवान ऐसे व्यक्ति श्रद्धावान जन को यथार्थ बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो व्यक्ति कृष्ण के पास जा सकते। तेषाम सतत युक्तानं भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो मुझे दिल से भक्ति करने चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मैं संपूर्ण बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो व्यक्ति मेरे पास तुरंत आ सकते हैं। तो सुमेध जन नाम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो आप सब सुमेध है, आपका वो आपके लड़के लड़कियों को स्कूल भेजने का जरूरत नहीं है, संकीर्तन यज्ञ में डालो। वो संकीर्तन यज्ञ करने से आपके बच्चे तो आइंस्टाइन से और बड़ा बुद्धिमान हो जाएंगे। जो संकीर्तन यज्ञ करते हैं आइंस्टाइन से बुद्धिमान है, क्योंकि आइंस्टाइन तो बड़ा बुद्धिमान हुआ लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो संकीर्तन यज्ञ किया, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा तो वो स्तर तक भी नहीं पहुंचा कि मानव जीवन प्राप्त करके हमें ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है हम कौन है, कहाँ से आया है, परम सत्य क्या है, तो ये सब ब्रह्म जिज्ञासा, ये सब ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। तो सेतु सुमेध जो संकीर्तन यज्ञ में अंश ग्रहण करते हैं वही व्यक्ति सुमेध है। और खूब बुद्धि संसा और सब जो संकीर्तन यज्ञ में अंश ग्रहण नहीं करते हैं सब संसार में रहते हैं, खूब बुद्धि उनकी बुद्धि खूब बुद्धि बोलते हैं। क्योंकि मानव जीवन प्राप्त करके हमें वो ही अनुसंधान करना चाहिए जिससे हम दुखमय संसार चक्र से मुक्त हो सकते। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम नित्यमपि हधेर तूर्णं यथे तनपतेदनु मृत्युयाव निश्चयस्य विषयः खलु सर्वथा स्यात्। मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, 84 लाख जीव जाति है जिनमें 4 लाख मनुष्य है, परंतु अमानव देहधारी जीव का संख्या मानव जाति से बहुत बहुत अधिक होते हैं। तो मानव जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, और मानव जन्म में एक विशेष अवसर है क्योंकि मानव जन्म में बुद्धि पशुओं पक्षियों वो सब अमानव देह मानव अमानव देहधारी जीवों की बुद्धि से अधिक है मानवी बुद्धि। तो वो बुद्धि तो बड़े बड़े लंबा बिल्डिंग बनाना के लिए नहीं है, भगवान हमको वो बुद्धि प्रदान किया जिससे हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, कृष्णानुसंधान करेंगे। तो यदि दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके हम हमारी भयानक परिस्थिति नहीं देखते और किस प्रकार हम ये भयानक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण की परिस्थिति से मुक्त हो सकते हैं, तो वो अनुसंधान वो प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि बहुत बड़ी होती हुई भी कुबुद्धि बोलते खराब बुद्धि होते, क्योंकि हम जितने भी प्रयास करते ना हो बड़ा बिल्डिंग बनाना विराट सभ्यता बनाना तो यही सबसे क्या होते है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, कुछ भी कल्याण नहीं होते। इसलिए ये लोग जो संकीर्तन यज्ञ में अंश ग्रहण नहीं करते कुबुद्धि संसार बोलते, शेतो सुमेध आर कुबुद्धि संसार सार्वजज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा। बहुत प्रकार के यज्ञ है भगवद गीता में, भगवान कृष्ण कहते ज्ञान यज्ञ है द्रव्य यज्ञ क्रिया यज्ञ, तो इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं और अश्वमेध होते गवामेध यज्ञ होते क्रतु महाक्रतु अलग अलग नाम के यज्ञ अलग अलग विधि के अनुसार। तो श्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। हम जब कहते हैं कि संकीर्तन एक यज्ञ है, कुछ लोग तो यही बात स्वीकार नहीं करते, यज्ञ कैसे यज्ञ है, कहाँ है होता, कहाँ है ऋत्विक, कहाँ आग घी, वो कैसे यज्ञ है, और रास्ते रास्ते में करते हैं तो एक पवित्र स्थल पर करना चाहिए और हवन का कुंड बनाना है तो वो सब तो नहीं है तो कैसे यज्ञ है। तो ऐसे लोग नहीं समझते कि यज्ञ का मूल उद्देश्य है आत्मसमर्पण। ये यज्ञ शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस आत्मनिवेदन करना। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम अपने को कृष्ण के चरण पर निवेदन आत्मनिवेदन। इसलिए सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार, श्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि कलयुग में वो सब अश्वमेध यज्ञ करने की शक्यता नहीं है इसलिए ये एक विकल्प है, ऐसा तो नहीं है। श्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। और दूसरे युग में भी यदि हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो हमें और कोई दूसरा यज्ञ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन विशेषकर कलयुग में हम अवसर मिलते हैं क्योंकि संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञ का प्रचार किया है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी और भी कहते हैं कि कोटि अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम सम जे कहे से पाषंदे दंडे थारे जम। तो सबसे महान और कठिन यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। इंद्रदेव का एक नाम है शतक्रतु। यदि किसी व्यक्ति सोबा अश्वमेध यज्ञ करते है वो योग्यता मिलते है इंद्र होने के लिए। तो एक बार करना बहुत कठिन है क्योंकि पूरी पृथ्वी पर विजयी होने चाहिए, ऐसे बड़ा सम्राट होने चाहिए तो बहुत कठिन है। तो सामान्यतः कि अश्वमेध यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है लोग का वैसे विचार होते हैं, परंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कोटि आश्रय, एक करोड़ आश्रय, सो बात हो वो तो कोई बात नहीं है, एक करोड़ बार अश्वमेध यज्ञ करना एक कृष्ण नाम सम, एक बार कृष्ण 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 बोलो कृष्ण कृष्ण, तो एक बार कृष्ण बोलने से वो करोड़ बार अश्वमेध यज्ञ तो कुछ नहीं ऐसा होता है, और करोड़ बार अश्वमेध यज्ञ करना एक बार कृष्ण नाम जापना के समान नहीं है। और यदि कोई ऐसे कहते हैं कि ओ कृष्ण नाम इतना महान है, करोड़ बार अश्वमेध यज्ञ करने के समान है, यदि कोई उसी प्रकार कृष्ण नाम की स्तुति करने चाहते, जो ऐसे कहते हैं वो पखंडी है। हाँ, ऐसे ऐसे कृष्ण नाम की स्तुति नहीं करने चाहिए कि कोटि करोड़ बार अश्वमेध यज्ञ एक कृष्ण नाम हो, इतना बड़ा है कृष्ण नाम, नहीं, जो ऐसे कहते पाखंडे है, पापी है। और दंडे तारे जम, तो यमराज से दंडनीय है, क्योंकि वो अश्वमेध यज्ञ सामान्यतः किस लिए करना है, भौतिक भौतिक कल्याण के लिए। ऐसे जैसे वो युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, क्योंकि वे राजा थे, राजर्षि, परम भक्त, राजा भी थे और परम भक्त भी थे, तो कृष्ण की प्रीति से अश्वमेध यज्ञ किए है। परंतु सामान्यतः अश्वमेध यज्ञ करने का उद्देश्य है भौतिक संसार में बड़ा पद प्राप्त करने के लिए, तो वो एक भौतिक व्यवस्था है। और कृष्ण नाम तो पूर्ण शुद्ध है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नवान नाम नामिनो हो। संक्षेप में किस प्रकार कृष्ण नाम दिव्य चिन्मय है, यही श्लोक में, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सबका कंठस्थ करना चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनवान नाम नामिनो हो। कृष्ण नाम चिंतामणि है, चिंतामणि उसका अर्थ है वो पूरा सच्चित आनंदमय है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, भौतिक जीव से ओष्ठ से हम और हवा जो अंदर से आते हैं, तो ये तीनों मिलके और दांत भी है, तो ये चारों मिलके हम सभी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार के शब्द बोल सकते हैं, मैं ऐसे था वहाँ से आ रहा हूँ, ये सब बोल नहीं, ऐसे बोल होते न, परंतु कृष्ण नाम तो हमारा मुँह से निस्रित होते हुए भी वो कृष्ण नाम पूरा चिन्मय है। ये कृष्ण नाम का कोई संपर्क नहीं है भौतिक वस्तुओं से। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य कृष्ण नाम चिन्मय है, पूरा चैतन्मय है, और रस विग्रह चिन्मय रस के रूप है, कृष्ण नाम पूर्ण है, कभी भी अपूर्ण नहीं है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। ये कृष्ण नाम तो ये भौतिक सृष्टि का एक वस्तु कभी भी नहीं होता है। क्यों कृष्ण नाम का इतना सा महत्व है, क्योंकि भगवान तो वैसे है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, भगवान कृष्ण ही है, और कृष्ण वो व्यक्ति परम पुरुष भगवान कृष्ण है, कृष्ण और कृष्ण नाम दोनों अभिन्न है। तो ये सब तत्व ज्ञान हम चैतन्य महाप्रभु से सीखना है। तो एक कृष्ण नाम यदि हम विशेषकर यदि हम पूरा शुद्ध भाव से कहते हैं तो वो नाम का कुछ भी संस्पर्श नहीं है ये भौतिक वस्तुओं और विषयों से। तो इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम वे ही कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम ये शब्द का दो मुख्य अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है और कृष्ण वर्ण वर्ण शब्द का एक अर्थ है अक्षरों। तो चैतन्य महाप्रभु सदैव कृष्ण 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 है ऐसे कहते हैं। तो कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णम इनकी वे कृष्ण होते हुए भी इनकी अंग कांति कृष्ण काला तो नहीं है वे ही गौरंग है। गौरंग राधा भाव द्युति सुगलितम नौमे कृष्ण स्वरूपम। तो किस प्रकार कृष्ण काला चंद तो यही अवतार में गौर चंद होगा वो भी बहुत गहरा का विषय है कि कृष्ण भगवान राधा भाव राधा जी का भाव और अंग कांति ग्रहण करके कृष्ण वर्णं त्विषा त्विषा कृष्णम यही रूप में आया है। तो कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, शास्त्र प्रमाण क्या है? तो यही प्रमाण है श्रीमद् भागवत में यही मुख्य प्रमाण कृष्णवानं त्विषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। यही श्लोक श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद में आते हैं जिसमें सभी युग सत्ययुग त्रेतयुग द्वापरयुग कलयुग के अलग अलग विशेष लक्षण का वर्णन है और सभी युग के युग अवतार का वर्णन है। तो कलयुग का युग अवतार का वर्णन यही है कृष्ण वर्णं त्विषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधसः। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये सब वैष्णव तत्व ज्ञान सिखाने में तो यही श्लोक बताए कलयुग का अवतार के बारे में। और सनातन गोस्वामी बोले हाँ हाँ और एक बार विचार करने चाहिए। तो यही है नहीं कि कलयुग का अवतार का अकृष्ण के रूप में और संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी बोलने चाहते थे कि आप ही वो ही भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तो यही अवतार में छन्न खलो कि वे भगवान स्वयं ही है। तो यही बात तो सबको नहीं बताया छिप रहते थे और इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के ये चातुरी छोड़ दो और हम दूसरे विषय के बारे में बात करेंगे। तो इसी प्रकार वो उत्तर नहीं दिया लेकिन स्पष्ट है कि यही श्लोक से चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। क्योंकि यदि चैतन्य महाप्रभु कौन किसने संकीर्तन यज्ञ प्रवर्तन किया कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन है? कौन कौन कोई दूसरे नहीं है। यदि हम किसी भी वैदिक संप्रदाय के विद्वान से पूछेंगे कलि युग का युग धर्म क्या है, तो सब उत्तर देंगे हरि नाम, चाहे भी रामानुज संप्रदाय के है, वल्लभ संप्रदाय के है, माध्व संप्रदाय, शंकर संप्रदाय के आचार्यों भी स्वीकार करते हैं कि कलि युग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। कौन करते हैं? चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में गौड़ीय वैष्णव जो है वही करते हैं। तो ये कृष्ण वर्णन त्विषा कृष्णम ये मुख्य प्रमाण है श्रीमद् भागवत का कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और इस श्लोक सप्तम स्कंद प्रहलाद का वचन में भी हम छंद खलो यही वर्णन मिलते है कि चैतन्य कलि युग में भगवान ढका हुआ, अर्थात कि वे भगवान तो स्पष्ट सबको नहीं बताते, क्योंकि कलि युग में बहुत बहुत नकल भगवान है जिनके कुछ भी योग्यता नहीं है भगवान होना, ऐसे बहुत है। नहीं सब पंजाब में कोई कोई भगवान है और उत्तर प्रदेश में कोई कोई है, बंगाल में जोतो ग्राम तोतो भगवान, जितने भी गांव इतने भी भगवान है, ऐसे तो वास्तविक भगवान है, खेते हुए भगवान है। तो क्योंकि कलि युग में ऐसे बहुत ढोंगे कहते हुए भगवान है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट नहीं बताए कि मैं भगवान हूँ। एक और कारण है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, विशेषकर भक्ति रस आस्वादन करने के लिए। तो भगवान स्वयं भक्ति रस आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति रस का विषय है भगवान, भगवान की भक्ति करने है। तो भगवान तो स्वयं की भक्ति नहीं कर सकते, तो इसलिए भगवान तो श्रेष्ठ भक्त श्री राधा के भाव ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और इनकी मानस भावना है कि मैं भक्त हूँ। तो ये सब बहुत गहरा विषय है और अभक्तों और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के बहाव भक्तों के लिए समझना कठिन ही है। तो हम बहुत ही भाग्यवान है कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम ये सब बहुत गंभीर रहस्य में प्रवेश ग्रहण किया, हम अवसर मिले। तो कल गौर पूर्णिमा दिवस पर हमें चैतन्य महाप्रभु की विशेष पूजा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की विशेष पूजा कैसे होती है? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो कल हम यज्ञ करेंगे, कल हम यज्ञ किया, आज भी यज्ञ किया है। ये यज्ञ में अंशग्रहण करने के लिए तो ब्राह्मण जाति में जन्म लेना की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदू होने का आवश्यकता नहीं है और विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है। तो योग्यता क्या है? वो संकीर्तन यज्ञ में अंशग्रहण करना, श्रद्धा, श्रद्धा वंजन हो भक्ति अधिकारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.